हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विक्रांत की माँ ने उससे साफ साफ कह दिया था, अगर तुझे इसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाना है तो बेहोशी की हालत में ही बनाना होगा। अगर तूने इसके साथ होश में रिश्ता बनाया तो इसका जो अब बच्चा है, जो उसके पेट में पल रहा है, वो भी होश में आ जाएगा और फिर वो तुझे इसे छूने नहीं देगा। इसीलिए तुझे बेहोशी की हालत में ही इसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाना होगा। अपनी माँ की बात सुनकर विक्रांत कुछ देर चुप रहा था और फिर बोलने लगा था, चाहता तो मैं ये था कि जब मैं उसके साथ रिश्ता बनाऊं तो ये मुझे देखे। लेकिन खैर, अगर मुझे हमेशा हमेशा के लिए से पाना है तो मुझे ये काम करना ही होगा। ये सोचते हुए विक्रांत अपने मुंह पर हाथ फेरने लगा था। वो बड़ी ही वहशी नजरों से तारा को देखने लगा था। वहीं दूसरी ओर अमन अपनी मॉम करिश्मा जी को बताकर पिशाचिनियों के जंगल की ओर रवाना हो चुका था। वो अच्छी तरह से जानता था पिशाचिनियों के जंगल में हर एक कदम पर उसे चुनौतियों का सामना करना ही होगा, और उसके दादा महाराज ने तारा का पता दे दिया था तो वो किसी भी कीमत पर वहां जाकर रहेगा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जिंदा बचे या ना बचे, या फिर वो इंसान या जिन रहे या ना रहे, चाहे वो पिशाच ही क्यों ना बन जाए। लेकिन तारा को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देगा। अपना इरादा मजबूत करता हुआ अमन जल्दी ही पिशाचिनियों के जंगल के बाहर खड़ा हुआ था। विक्रांत रंधावा की माँ ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उन्हें पृथ्वी पर रहना है तो उनके लिए सबसे सेफ जगह सिर्फ और सिर्फ पिशाचिनियों का जंगल है। इसीलिए उन्होंने शुरू से ही उस जंगल की गुफा में अपना डेरा जमा लिया था, और अपनी जादुई शक्ति के द्वारा उन्होंने इस तरह का घेरा बनाया था कि कोई भी पिशाच उस गुफा के आसपास भी नहीं जा सकता था। इसीलिए विक्रांत रंधावा तारापरी को लेकर वहां पहुंच चुका था कि अगर जिन महाराज अमन उसे ढूंढता हुआ वहां आया तो उसे कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और आसानी से वो उस गुफा में नहीं पहुंच पाएगा जो कि जंगल के बीचों बीच थी। अमन जल्दी ही जंगल के बाहर खड़ा हुआ था और अपने आप को मजबूत बना रहा था उसे जंगल में जाने के लिए। वो अच्छी तरह से जानता था उस जंगल में उसे अलग अलग तरह के बहरूपिये मिलेंगे जो उसे अपने वश में करने की कोशिश करेंगे। अमन को किसी तरह से उनसे बचते बचाते हुए अपनी तारा तक पहुंचना होगा। जैसे ही मैंने अपना पहला कदम पिछसानियों के जंगल में रखा था, जोरों से हवाएं चलने लगी थीं, और अमन जल्दी से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था और अपने चारों तरफ अच्छी तरह से देख रहा था। पूरे पूरे जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। कहीं ना कहीं अमन को इस खामोशी के पीछे का राज अमन को अच्छी तरह से समझ आ रहा था। और अभी अमन ने केवल 10 से 12 कदम ही जंगल में आगे रखे थे कि अचानक से उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। अमन को काफी अजीब लगा था। वो अच्छी तरह से जानता था यहाँ पर हर कदम पर झूठ मिलेगा, छलावा मिलेगा, फरेब मिलेगा, और उसे उन सबसे बचते बचाते हुए आगे जाना था। तो जैसे ही उसने बच्चे की आवाज़ सुनी, उसके ऑटोमेटिक कदम अपने आप ही रुक गए थे। वो इस तरह से बच्चों की आवाज़ को सुनकर इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन फिर उसने अपने दिल को मजबूत किया था क्योंकि उसके दादा महाराज ने उसे साफ साफ बता दिया था, इस जंगल में उसे इस तरह की आवाज़ जरूर आएंगी जो कि आम है। इसीलिए अमन कुछ देर वो आवाज़ सुनने के बाद अपने दिल को मजबूत करता हुआ वो तेज़ी से वहां से निकलने लगा था। और जैसे जैसे अमन तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। जब अमन को लगा कि ये आवाज़ उसका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, तो इसीलिए अमन ने सोचा कि क्यों ना रुककर एक बार इन आवाज़ों को ही चेक कर लिया जाए। तो ये सोचते ही अमन रुका था और चारों तरफ देखने लगा था, लेकिन उसे कहीं कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अचानक जैसे ही अमन आगे बढ़ा और दूसरा कदम आगे रखा, तो तुरंत ही उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा, बड़ा ही क्यूट और मासूम सा बच्चा दिखाई दिया था। जैसे ही अमन ने उसे देखा, वो हैरान हो गया था। अमन सोचने लगा था कि अगर उसने एक कदम और आगे बढ़ा दिया होता तो उसका पैर इस बच्चे के ऊपर पड़ जाता। वो बच्चा बड़ा ही खूबसूरत था। उस बच्चे को देखने के बाद अमन के दिल में आया कि इस बच्चे को गोद में ले ले और उससे पूछे कि वो कहाँ से आया है, लेकिन वो बच्चा तो अमन को देखा जा रहा था। अमन सोच रहा था कि वो अब क्या करे, क्या वो सोचते हुए बच्चे को छोड़कर आगे बढ़े या फिर उसे चप कराए। लेकिन फिर अब अमन ने आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया था, और जैसे ही उस बच्चे के सामने से अपना कदम आगे बढ़ाया, अचानक उस बच्चे ने अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से उस बच्चे के पैरों को कसकर पकड़ लिया था। अमन की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि भला इतना मासूम में छोटा सा बच्चा किस तरह से इतना मजबूत हो सकता है, जो इतनी शक्तिशाली है, अमन को हिलने तक भी नहीं दे रहा था। अमन ने काफी कोशिश कर ली थी,
लेकिन वो अपना पर उसे बच्चों के हाथों से छोड़ ही नहीं पा रहा था। एक तो उस पिशाच ने एक बच्चे की शक्ल ले रखी थी, तो इसीलिए अमन उस पर आक्रमण भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो बच्चा था कि अमन का पैर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब अचानक अमन नीचे झुका था और उसने उस बच्चे का हाथ खड़ा करके पकड़ लिया था और अपना प्यार से छुड़ाने की कोशिश करने लगा था। लेकिन अमन को महसूस हुआ कि जैसे जैसे वो उसे बच्चे का हाथ पकड़कर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे उसे बच्चे का हाथ तो उसके पैर पर कसता जा रहा था। अमन को गुस्सा के मारे बुरा हाल था कि भला इस बच्चे में, जो कि देखने में इतना खूबसूरत था, उसमें इतनी ताकत कैसे हो सकती है। और अब जब अमन का सब्र जवाब दे गया तो अचानक अमन ने अपने दादा महाराज का दिया हुए पानी की 2 से 4 बंदे उसे बच्चों के ऊपर डाल दी थी। और जैसे ही अमन ने उस बच्चे के ऊपर 2 से 4 पानी की बूंदे डाली तो अचानक से उस बच्चे का शरीर चलने लगा था और एकदम से वो बच्चों के रूप से धीरे धीरे बड़े ही विशाल खूंखार पिशाच में बदल गई थी। उसके बड़े बड़े दांत थे और उसकी एक बहुत बड़ी और लंबी सी चोटी थी। इतना ही नहीं, वो एकदम काली सी थी। अमन उसे हैरानी से देखे गया था। तभी अमन के दिमाग में बिजली सी कुंदी थी। वो समझ चुका था कि ये यहां पर क्यों आई है। इसलिए इससे पहले कि वो कुछ कदम उठाती, अचानक अमन ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया था और एक पास में ही खड़े हुए एक मजबूत पेड़ के तने से उसके बालों के कसकर बांध दिया था। अमन अच्छी तरह से जानता था इस पिशाचिनी की सारी शक्तियां इसके बालों में हैं, इसीलिए अमन ने उसके बालों को बांध दिया था। अमन अच्छी तरह से जानता था इसकी सारी की सारी शक्तियां इसके बालों से हैं, और अगर इसके बाल बन जाएंगे तो उसके बाद ये उसे कुछ नहीं कर पाएगी। अमन ने जैसे ही उसे उस पेड़ के तने से बांधा, अचानक खून के आंसू निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि वो पिशाचिनी उस वक्त अमन को निशाना बनाकर उसकी उम्र को खाना चाहती थी और उसका खून पीना चाहती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमन जल्दी से वहां से निकल चुका था और आगे बढ़ने लगा था। अमन जानता था उसे आगे भी तैयार रहना होगा। अमन जल्द से जल्द तारा तक पहुंचने में देरी नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर विक्रांत रंधावा की मां ने एक हवन करना शुरू कर दिया था और जल्दी ही उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर तारा के ऊपर फूंकने शुरू कर दिए थे,
जिससे तारा बेहोश होती जा रही थी। उसका बच्चा, जो कि उसके पेट में था, वो भी जल्द से जल्द तारा के पेट में पूरी तरह से बेहोश होने लगा था। वो अच्छी तरह से जानता था, जैसे ही तारा के साथ उसका बच्चा भी बेहोश होगा, उसके बाद वो उसके साथ जैसा मर्जी ऐसा बर्ताव कर सकता था। इसलिए वो जल्दी से तारा और उसके पेट में चल रहे बच्चे को बेहोश होते हुए देखना चाहता था। उसके बाद उसे वहां रोकने वाला कोई नहीं होगा, खुद तारा भी नहीं। तो ये सोचते हुए विक्रांत मन ही मन में मुस्कुराने लगा था और तारा को बड़े ही हवस भरी नज़रों से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो अच्छी तरह से जानता था अब वो तारा के पास, जिससे तारा बेहोश होती जा रही थी, उसका बच्चा, जो कि उसके पेट में था, वो भी जल्द से जल्द तारा के पेट में पूरी तरह से बेहोश होने लगा था। वो अच्छी तरह से जानता था, जैसे ही तारा के साथ उसका बच्चा भी बेहोश होगा, उसके बाद वो उसके साथ जैसा मर्जी ऐसा बर्ताव कर सकता था। इसलिए वो जल्दी से तारा और उसके पेट में चल रहे बच्चे को बेहोश होते हुए देखना चाहता था। उसके बाद उसे वहां रोकने वाला कोई नहीं होगा, खुद तारा भी नहीं। तो ये सोचते हुए विक्रांत मन ही मन में मुस्कुराने लगा था और तारा को बड़े ही हवस भरी नज़रों से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो अच्छी तरह से जानता था अब वो तारा के पास जा सकता था। उस जंगल की यही खास बात थी कि उसमें कदम रखने के बाद जिसके पास किसी भी तरह की जो भी शक्तियाँ थीं वो काम नहीं करती थीं। सिर्फ अगर वहां पे किसी की शक्तियां काम करती थीं तो सिर्फ और सिर्फ एक पिशाच की शक्तियां काम करती थीं। और अभी अमन थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तुम्हें अचानक से 4 से 5 पिशाच एक साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे। वो सभी दिखने में बड़े ही ज्यादा भयानक थे, लेकिन वो उनसे एक पल भी नहीं डरा था, क्योंकि वो बेधड़क उनके सामने से निकलने लगा था। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था ये पिशाच या तो फिर वो इंसान को पिशाच बनाकर छोड़ते थे या फिर वो उसका खून पीकर उसकी जान ले लिया करते थे और साथ ही साथ उसकी उम्र भी चुरा लिया करते थे। और जैसे ही अमन आगे बढ़ा, अचानक से 4-5 पिशाचों ने अमन पर आक्रमण कर दिया था और चारों तरफ से उसे घेर लिया था। अमन अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस बीच उन लोगों के साथ झड़प में अमन के हाथ से वो जादुई पानी भी गिर चुका था, जो कि उसके दादाजी महाराज ने दिया था। अब अमन काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तभी एक बहुत बड़ा पिशाच तेज़ी से कदमों से अमन की ओर बढ़ रहा था। अचानक से वो अमन के कंधे पर चढ़ गया था। उसने अपने दांतों को अमन के गर्दन पर गड़ा दिए थे। अमन को अब उन पर बहुत तेज गुस्सा आ गया था। उसने जोरों से उसकी गर्दन को पकड़ लिया था और उसे पटक कर मार दिया था और जल्दी से अपने पानी की बोतल उठाकर उन लोगों के ऊपर छिड़क दिया था। हालांकि उसने जिस जगह पर अमन को काटा था उसी जगह पर उसने अपने दांत बुरी तरह से गड़ा लिए थे। अमन को वहां पर थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ था, लेकिन उसने किसी तरह का उस वक्त उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त अमन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जल्दी तारा को ढूंढने पर था। अमन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि पिछले जन्म का वो राजा विक्रम सिंह तारा को लेकर कितना ज्यादा पागल है। अमन ने तारा का पिछला जन्म ऑलरेडी उसी के साथ देखा था और उसे ये भी पता था कि राजा विक्रम सिंह तारा को पाने के लिए सारी हदें पार कर सकता है। उसके लिए अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ तारा। तो इसीलिए अमन बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता था। वो जल्द से जल्द तारा को ढूंढकर उसे बचाना चाहता था, क्योंकि अमन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो राक्षस का अंश तारा को हर हाल में पाना चाहेगा, क्योंकि उसके दादाजी महाराज ने उसे ये बात अच्छी तरह से बता दी थी कि जब तक तारा के पेट में जिन्नातों का वंशज है तब तक कोई भी गंदी निगाह से या राक्षस तारा को नहीं छू पाएगा, क्योंकि जिन्नातों का वंशज पेट से ही शक्तिशाली है कि वो अपनी माँ की रक्षा स्वयं कर सकता है। लेकिन अगर किसी न किसी तरह से उस राक्षस ने जिन्नातों के वंशज को बेहोश कर दिया या किसी तरह से अपने वश में कर लिया और तारा के साथ जिस्मानी रिश्ता बना लिया, तो तारा परी के खोने के साथ साथ जिन्नातों के वंशज की भी मौत हो सकती है और साथ ही साथ तारा हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी लोक से गायब हो सकती है। ये बात जिन महाराज अच्छी तरह से जानते थे। जिन महाराज ने तारा के परी होने का सच अमन को नहीं बताया था, लेकिन इतना जरूर बता दिया था कि अगर जिन्नातों का वंशज बेहोश हो गया या कुछ और तरीके से उस राक्षस के अंश ने तारा के साथ जिस्मानी रिश्ता बना लिया तो तुम तारा को कभी भी नहीं पा पाओगे और तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। तो तुम्हें हर हाल में तारा को उस राक्षस के अंश के छूने से बचना होगा ताकि किसी भी कीमत पर वो राक्षस तारा को छूने ना पाए। जैसे ही दादा महाराज ने अमन को ये सारी बातें बताई, अमन के चेहरे की एक एक नस दिखाई देने लगी थी, क्योंकि उस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो खुद तारा पर किसी की परछाई तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसे राक्षस के अंश की तो बिल्कुल भी नहीं। तो यही सोचते हुए अमन जल्दी से आगे बढ़ने लगा था और वैसे भी अमन उस राजा की दीवानगी उसके पिछले जन्म में देख चुका था और उसे ये भी पता चल चुका था कि वो राजा अब एक राक्षस बनकर उसके सामने आ गया है और अब उसने एक इंसान के अंदर अपना अंश भेजा है। इसीलिए अमन जल्दी से आगे बढ़ा था, लेकिन तभी अचानक उसने देखा उसके सामने कम से कम हजारों पिशाच खड़े थे। इतने सारे पिशाचों को एक साथ देखकर अमन बहुत ही ज्यादा गुस्से और हैरानी से भर उठा था, क्योंकि उसका अभी इन पिशाचों से झगड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वो तो बस जल्द से जल्द अपनी बीवी तारा के पास पहुंच जाना चाहता था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था अगर उसने देर कर दी तो शायद वो कभी भी अपनी तारा को देख नहीं पाएगा। लेकिन वो सभी पिशाच अमन को देखकर मुस्कुराने लगे थे।